તારીખ 4/3/1996 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 7.
પ્રશ્ન હે જ્ઞાન કા સુપર પ્રકાશક પના કિસ રીતે સે ભરતા હે તથા કલશ 271 के अनुसार स्पष्ट करने करें। ज्ञान का ये शक्ति है स्व और पर को प्रकाशन करने की। ज्ञान के पर्याय में स्व का अस्तित्व भी झलकता है और पर पदार्थ का अस्तित्व भी मालूम पड़ता है। ऐसे स्वपर प्रकाशक शक्ति ज्ञान के पर्याय में है। संसार के 271 करोस की टीका जो राघवन जी ने की है उसमें शब्द प्रयोग ऐसे हैं कि कोई ऐसा जानते हैं कि मैं ज्ञाता और छद्रव मेरा भी, परंतु ऐसी भ्रांति अनादि से चली आ रही है। मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही मेरा ज्ञेय हूं, इस तरह से वहां कथन चला है। कथन कोई भी हो उसके पीछे क्या हेतु है वो अवश्य देखना चाहिए। वहां राजमंदिर का हेतु स्वपर प्रकाशक शक्ति का निषेध करने का नहीं है। अगर ऐसा होता तो अन्यत्र अपने टीका में वो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पने को स्थापित नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी कभी परस्पर विरुद्ध कथन नहीं करते। अपनी बात करें और अपनी बात को ही खाते, ऐसा नहीं बनता। 222 और 252 आदि जो अनेक कलश है उसमें स्वपर प्रकाशकपना को स्थापित किया है, और 271 में ऐसा कथन आता है कि मैं ज्ञाता और छद्रव मेरा ज्ञेय, ऐसी भ्रांति अनादि से चली आई है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो इस टीका को पढ़ते हुए कई लोग स्वपर प्रकाशक का निषेध करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां स्वपर प्रकाशक शक्ति का निषेध करने का कोई हेतु नहीं है। अगर हेतु देखा जाए तो उतना ही है कि ज्ञेय ज्ञाय एक शंकर दोष होता है, पर ज्ञेय के जानने के काल में। अगर ज्ञेय ज्ञाय एक शंकर दोष होता है तो उससे मिथ्यात्व और अज्ञान होता है, और यह परिभ्रमण का कारण है मिथ्यात्व और अज्ञान, इसलिए उसका निषेध किया है। लेकिन स्वपर प्रकाशक पने का तो निषेध नहीं करते। और आत्मा पर को अगर जानता ही नहीं होता तो पर को नहीं जानने का कथन भी नहीं आता। मैं पर को नहीं जानता, ये बात वदतो व्याघात जैसी है। वदतो व्याघात माने क्या होता है संस्कृत हिंदी में, कि अगर कोई ऐसा कहे, ऐसा बोले कि मैं बोल नहीं सकता इसलिए कोई बात नहीं करूंगा। क्या बोला वो, मेरे मुंह में जीभ नहीं है पर जीभ नहीं होने से मैं बोल नहीं सकता इसलिए मैं कोई बात करूंगा नहीं। उतनी बात कैसे कही, जो जीभ ही नहीं थी तो उतनी बात कैसे कही। ऐसे सर्वथा ज्ञान पर को नहीं जानता ऐसा ले ले वे तो ऐसा कहना वही इसका सबूत है कि पर को जाने बिना पर को नहीं जानने की बात भी नहीं आती, क्योंकि पर को सर्वथा कोई आत्मा जानता ही नहीं तो पर का अस्तित्व किसने जाहिर किया। पर है या नहीं है, जानने लायक है या नहीं जानने लायक, ये सब बात कहां से आई। इसलिए ये बात सर्वथा लेना नहीं चाहिए। स्वपर प्रकाशकपना ये ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की जाति सम्यक और मिथ्या होती है और ज्ञान की गति अल्पज्ञत्व और सर्वज्ञत्व होती है और सत्ता स्वक्षेत्र प्रमाण होती है। ये बात विनाशी दास जी ने कही और ग्रंथ ग्रंथों में ये बात प्रसिद्ध है। इसलिए स्वपर प्रकाशक पने का और 271 कलश की टीका में कोई विरोध नहीं है। अध्यात्म के और भी शास्त्र में ऐसे कथन आते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं और मेरे ज्ञान के सिवा मैं किसी को जानता नहीं। वहां जानने का आशय अनुभव करने का है। क्यों, कि इतनी बात अवश्य है कि पर का अनुभव नहीं किया जाता। इसलिए जो अनुभव रस में मग्न है और अनुभव के रस में मस्त है वो कभी ऐसा कहते हैं कि हम तो हमारे ज्ञान के सिवा किसी को जानते ही नहीं है। एक मस्ती की बात है और उसमें अध्यात्म रस भरा हुआ है, ये भी शास्त्र का कथन है, लेकिन उसका अर्थ घटन कोई इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जिससे वस्तु का स्वरूप का विरोध हो जाए या सिद्धांत विरोधता हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अवकर्ता स्वभावी क्या लिखते हैं,
अकर्ता स्वाभी आत्मा के संदर्भ में ज्ञान राग का कर्ता नहीं तो कौन करता है, कृपया समझाने का कष्ट करें।
अच्छा, फिर मैं दोहराता हूँ, अकर्ता स्वाभी आत्मा के संदर्भ में ज्ञान राग का कर्ता नहीं है तो कौन करता है। राग ही राग का कर्ता है, या ऐसा भी ले सकते हैं कि पुद्गल राग का करता है, लेकिन ज्ञान तो स्वभाव से राग को करे तो ज्ञान को अपना अस्तित्व छोड़ने का अवसर आता है, अस्तित्व मिटाने का अवसर आता है और इस तरह से तो हो सकता नहीं। इसलिए ज्ञान राग का स्वभाव से तो करता नहीं सकता। दर्शन लोगों को कम करने का प्रयोग, कि प्रयोग की विधि क्या है, क्या यह साध्य है, क्या लिखते हैं देखो तभी साफ अक्षर में दीजिए क्या पुद्गल राग का करता है वो स्वभाव की दृष्टि से बोला जाता है, वास्तव में तो राग ही राग का करता है, लेकिन पुद्गल के आश्रय से होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पुद्गल राग का करता है, वो पुद्गल जनित है ऐसा बोलने में आता है। दर्शन मोह को कम करने का जो प्रयोग है वो प्रयोग का प्रारंभ होता है परिभ्रमण की चिंतना से, परिभ्रमण की वेदना से या तड़पन से होता है। जब ये तड़पन पर्याप्त मात्रा में आती है तब वास्तविक उदासीनता का क्रम शुरू होता है, वो उदासीनता के परिणाम भी दर्शन मोह के अनुभव को कम करते हैं। फिर यहां से यह आत्मा मुमुक्षु जीव अपना परिपूर्ण शुद्ध होने का निर्धार करता है कि मुझे परिपूर्ण शुद्ध होना है, दोष का एक कण भी मुझे नहीं चाहिए। संसार के पदार्थ में से सुख की आशा और अपेक्षाओं को अभिप्राय में से छोड़ करके परिपूर्ण शुद्ध होने का निर्धार करता है कि किसी भी कीमत पे मुझे इस संसार से छूट करके मेरा आत्म कल्याण पूरा पूरा कर लेना है। इस निर्धार में भी दर्शन मोह अवश्य अवश्य कम होता जाता है, क्योंकि वहां दोनों स्टेज में अभिप्राय की फेर बदली हो जाती है, अनेक प्रकार के विरुद्ध अभिप्राय टूटते हैं, कमजोर हो जाते हैं और सही अभिप्राय में जीव आता है अपने आत्म कल्याण के। तब से इस मुमुक्षु जीव का आत्मलक्ष्य परिणमन हो जाता है, स्वलक्ष्य परिणमन हो जाता है, सभी प्रकार के परिणमन में उनका लक्ष्य अपना आत्महित का और अहित के विषय में जारी रहता है और एक नई आत्म जागृति पैदा हो जाती है और उस आत्म जागृति के वशात अपने परिणमन में निष्पक्ष रूप से अवलोकन करने का प्रयोग चालू होता है। ये सभी प्रयोग के परिणाम है। ऐसे में अगर इनको कोई ज्ञानी पुरुष की भेंट हो जाए तो ज्ञानी पुरुष के सत्संग से और परिचय से उनकी पहचान होती है और उस पहचान से उनको ज्ञानी के चरण सानिध्य का प्रेम विशिष्ट प्रकार से पैदा हो जाता है, वो भी दर्शन मोह को कम करने का ही एक परिणमन का प्रयोग है। जब निरावलोकन का प्रयोग चालू होता है तब अपने हित रूप परिणाम और अहित रूप परिणाम की बहुत सूक्ष्म पैनी दृष्टि हो जाती है और उस दृष्टिकोण से भी दर्शन मोह कम होता जाता है। निरावलोकन से अपने भावों का जब परिचय होता है तो उस परिचय के दौरान भावों की जाति की पहचान आती है। जीव के परिणाम में दो जाति के परिणाम है। अनेक प्रकार के जो विभाव हैं उनकी एक विभाव जाति है और ज्ञान में स्वभाव जाति का भी परिणमन खुला है। गुरुदेव के शब्द में कहें तो ज्ञान में स्वभाव खुला मालूम पड़ता है। अगर ज्ञान को स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये दृष्टिकोण कब साध्य होता है कि जब अवलोकन की प्रैक्टिस अवलोकन अगर ज्ञान को स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये दृष्टिकोण कब साध्य होता है कि जब अवलोकन की प्रैक्टिस अवलोकन का प्रयोग सतत रूप से अच्छी तरह चलता है तब ये परिचय साध्य होता है। जो स्वभाव और निभाव जाति के पहचान आती है तो विभाव जाति के अनेक विध परिणाम होने के बावजूद भी सभी विभावों में दुख क्लेश दाह जिसको कहते हैं और आकुलता जिसको कहते हैं मलिनता और अपने स्वरूप से ज्ञान से विरुद्धता मालूम पड़ती है। जैसे कि समय सार के बहुत देर गाथा में कहा अशुचिपणु विपरीतता आश्रमों का जान करके वो तीन मुद्दा विभाव जाते के परिणाम में सभी विभाव में होते हैं और ज्ञान में पवित्रता है क्योंकि कषाय का अभाव है और ज्ञान में कषाय का अभाव होने से निराकुलता भी है यानी ज्ञान का स्वाभाविक रूप है वो सुख रूप है और अपने स्वरूप स्वरूप से वो अविरुद्ध है। जो स्वभाव और विभाव के ऐसे पहचान होती है तो सहज रूप से दोनों के बीच में भेद ज्ञान का प्रयोग चालू हो जाता है। ये भेद ज्ञान का प्रयोग से आत्मस्वरूप का भावभाषण यानी आत्मस्वरूप की पहचान होती है और वो भेद ज्ञान का प्रयोग भी दर्शन को कम कर अनुभव को कम करता है और जब स्वरूप की पहचान होती है तब तो दर्शन वो उपशम होने के योग्य भूमिका में आ जाता है। ये जो स्वरूप की पहचान है ये सम्यक बोध सम्यक ज्ञान उसके बीज रूप भूमिका है। बोध बीज योग्य भूमिका इसको बोली जाती है उसको बीज ज्ञान भी कहते हैं और यहां से सम्यक सन्मुख ज्ञान और वीर का परिणमन का एक अंश चालू होता है। चैतन्य वीर की स्फूर्णा पैदा होती है और स्वरूप का उतना महिमा आता है जो समाता नहीं है उतना आता है और यही आत्मरुचि प्रयोग प्रायोग्य लब्धि से आगे है। वो प्रायोग्य लब्धि तो अनंत बार आई और गई चारों लब्धियां लेकिन ये स्वरूप सन्मुख हुआ और स्वभाव का संस्कार डला वो तो कभी जाने वाला है ही नहीं तो वो सहज साध्य है और ये स्वरूप की अनन्य रुचि वहां पैदा होती है वो फिर पुरुषार्थ भी सर्व सन्मुक्ता का तीव्र मात्रा में होता है और यही पुरुषार्थ अनुभव को लेकर के ही रहता है, इसके पहले थामता नहीं है। उस तरह से दर्शन प्रत्येक स्टेज में कम होता ही जाता है और उतना कमजोर हो जाता है, उतना कमजोर हो जाता है कि आखिर में वो दबता है, उसको उपशम कहते हैं। और वही उपशम होने के काल में ही अस्थिर रूप से सम्यक दर्शन पैदा होता है, जिसको उपशम सम्यक दर्शन कहने में आता है। कितनी प्रकृतियों का 41 प्रकृतियों का विच्छेद होता है वहां, 41 प्रश्न। आगम में सर्वत्र देव शास्त्र गुरु को समान महत्ता बताइए, फिर आप देव तथा शास्त्र को अर्थात जिन प्रतिमाएं और जिनवाणी को गौण करके सदगुरु ज्ञानी पुरुष को क्यों मुख्य करते हैं। ऐसा है कि देव का तो जमाना ही पूरा हो गया, हमको तो वर्तमान में तृषा लगी है। दूर में क्षीर समुद्र होवे तो भी वो हमारे काम का नहीं है, यहाँ तो हमें पानी का एक कलश भी मिल जाए तो प्राण बच जाए। तो देव का जमाना तो 2500 साल पहले ही खत्म हो गया, तो जो चीज है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। और जिन प्रतिमा है और जिन वाणी है वो तो संस्कारी जीव के लिए ही सम्यक दर्शन का निमित्त हो सकते हैं, जो जिसको स्वभाव का संस्कार नहीं हो उनके लिए सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं हो सकता है, पात्रता का निमित्त हो सकता है। और सद्गुरु का तो महिमा करते ही है, जो गुरु है वो उपलब्ध है इस जमाने में, गुरु के माध्यम से ये रास्ता हमें वो दिखा सकते हैं, देखा है तो दिखा सकते हैं। तो ये हमारे प्रयोजन का विषय है, अगर हमारी दृष्टि प्रयोजन के पकड़ वाली हुए तब तो हम यही काम की चीज रही है, बाकी और कोई वो काम करता हूं प्रश्न है ही नहीं। इसलिए प्रयोजन वशात ये बात चलती है। सुनाई नहीं देता है आपकी बात। सच्चा गुरु विश्वास सच्चा गुरु पर विश्वास तो होना ही चाहिए, विश्वास नहीं हो तो काम कैसे होगा। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सजीवन का निमित्त किस प्रकार। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण के तत्समय के पर्याय की योग्यता है और वह क्रमबद्ध है। ठीक बात है, पर्याय तो सब क्रमबद्ध है, लेकिन क्रमबद्ध की जानकारी अवलंबन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। आगम और अध्यात्म की बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो सिर्फ जानकारी करने के लिए होती है, अवलंबन के लिए योग्य नहीं होती है। मतलब यह है कि हमारे सामने तत्वाभ्यास करने में कितनी भी बात आए, हमें इसके दो खाते रखने जरूरी है। एक अवलंबन लेने वाला खाता और एक सिर्फ जानकारी करके उसको साइड में रखने का, गौण करने का खाता। दो बात का अगर हम बंटवारा नहीं कर सकते, बाइफर्केशन नहीं कर सकते, तो शास्त्र अभ्यास तत्व अभ्यास लाभ करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, शास्त्र शस्त्र भी हो सकता है हमारी समझ के फेरफारी से, उल्टी समझ से ये नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए सम्यक दर्शन क्रमबद्ध है ऐसा मान करके इसका अवलंबन ले लें तो ये इस भूमिका में सामान्य जीव का कोई काम नहीं है। क्रमबद्ध जानते ही कोई ज्ञाता दृष्टा होता है ज्ञानी, उसकी बात अलग है, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ज्ञायिक स्वरूप में चल रहा है। लेकिन न न्यायिक स्वरूप का पता मिला है, न इसका पुरुषार्थ चलता है, और पर्याय को क्रमबद्ध मान करके अवलंबन ले लें तो नुकसान हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए ये बात यहाँ इस प्रश्न के साथ तो जोड़ना उचित नहीं है। अब बात रही दो द्रव्य की भिन्नता। जो दो द्रव्य की भिन्नता है तो फिर वस्तु का जो स्वरूप है, इस स्वरूप में क्या ऐसी बात भी है कि संसारी जीव के परिणाम जो है वो परिणाम संयोग का संस्कार नहीं झेलता है? संस्कार में है कि नहीं है? संस्कार में से आत्मा पर का संस्कार झेलने वाला है कि नहीं है? इस संस्कार में से नहीं झेलने वाला भी है और संस्कार में से झेलने वाला भी है। और देखिए अपने अनुभव को, आजकल हमारे धार्मिक समाज में टीवी नहीं देखना चाहिए ऐसी बात क्यों प्रसिद्ध रूप से चल रही है कि अगर ये टीवी का जमाना बहुत चला तो हमारी संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? कि सामान्य संसारी जन है वो संयोग के असर में आए बिना नहीं रहता। इसका मतलब वो नहीं है कि अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमाता है, परिणमन तो खुद ही करता है। ऐसे सजीवन मूर्ति के सत्संग में परिणमन तो सम्यक दर्शन रूप आत्मा खुद ही करता है। वहां कहने का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि ज्ञानी परिणमन कराता है या कर देता है, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन जो दर्शाता है, मार्ग को दर्शाता है, स्वरूप को दर्शाता है, उनको जो देखता है तो देखने वाला कहता है कि उन्होंने मुझे दर्शाया। देखने वाला ऐसा कहता है कि उन्होंने मुझे दर्शाया, लेकिन देखा तब तो, नहीं देखा तो क्या दर्शाया? कुछ नहीं दर्शाया। तो बात तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की है। धर्म में आता है कि विश्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है। जैसे आत्मा और छह द्रव्यों अनादि अनंत है, ऐसे छह द्रव्यों के बीच में परस्पर आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी पारिणामिक भाव से है, माने अनादि अनंत है। कालानु निमित्त बनता है पांचों द्रव्यों के परिणाम में, आकाश निमित्त बनता है बाकी के पांचों के उदाहरण में, धर्मास्थिका गति करने वाले को निमित्त बनता है, अधर्मास्थिका स्थिति करने वाले को, और ज्ञान में ज्ञेय निमित्त बनते हैं, ज्ञेय में ज्ञान निमित्त पड़ता है, जीव जय दोनों। और सारा करणानुयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही जाहिरात है और क्या है। क्यों? कि करणानुयोग में कर्म के परमाणु और जीव के परिणाम से जो भी आपस में एक्शन रिएक्शन होता है, इसकी तो कथा है और इसके नियम है, इसके सिद्धांत है। जीव रागादि विभाव करें और उसको तद अनुसार डिग्री टू डिग्री कर्म नहीं बने, ऐसा एक केस भी नहीं होता। इसका मतलब क्या? क्या जीव कर्म को करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो सर्वथा भिन्न है। परमाणु और जीव तो सर्वथा भिन्न है, फिर भी ये क्रोध करेगा नहीं बदलेगी। परमाणु तो कुछ जानता नहीं, न जीव उसको कुछ करता है, लेकिन इसकी भी योग्यता होती है। तो हमें पदार्थ के स्वरूप को, पदार्थ के सभी प्रकार के गुण धर्म से जानना चाहिए। उसकी त्रिकालीन शक्तियां भी हैं, उसके पर्याय भी हैं, और एक एक पर्याय के भी अनंत धर्म हैं, गुण के भी अनंत धर्म हैं, द्रव्य के भी अनंत धर्म हैं, तीनों के कैरेक्टर्स अनंत प्रकार के अलग अलग हैं। उनको भी जानना चाहिए, जहां जितना प्रयोजन हो उतना। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति में संयम वृत्ति का योग होना होता है, तभी प्रायोरिटी में देना है, तभी ये प्रश्न बनता है। इसके पहले कभी किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो ऐसा बना नहीं, बनता नहीं और बनने वाला भी नहीं है। देखिए हमारे भगवान महावीर स्वामी, उनका इतिहास जो है, आत्मा तो अनादि का था, सभी आत्मा अनादि के हैं, वो भी अनादि के थे, लेकिन इतिहास को हमको ऋषभदेव स्वामी के पौत्र के जमाने से मिलता है, इसके पहले वाला इतिहास नहीं मिलता है। उनके पौत्र थे और जैन धर्म के पूरे विरोधी थे, अपने दादाजी के पूरे विरोध करते थे, उष्टांच विरोधी थे। बाद में अनेक बार वो नरक आदि गति में गए। जब जब वो मनुष्य हुए हैं एक कोड़ा कोड़ी सागर तक, तब तक उन्होंने जैन धर्म का विरोध करने में कोई कसर नहीं रखे थे। ऐसा होने के बावजूद भी तो महावीर स्वामी के अगले दस के दसवें भाव में जब सिंह के पर्याय में आए हुए थे, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पर्याय तो क्रमबद्ध थी, लेकिन कोई परिस्थिति बनी कि नहीं बनी, हाँ, किसी से बोध प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हाँ, काल भी थी, पुरुषार्थ भी था, संयोग भी था, निमित्त भी था, पांचों संभाव था। अगर हम एक को स्वीकारते हैं तो पांचों का स्वीकार होना जरूरी है। एक का स्वीकार करे और दूसरे का नहीं करे तो वो हमारी समझ ठीक नहीं है। तो निमित्त का सद्भाव या अभाव होता ही है। वो पांचों समय में सभी प्रकार की बात समझनी चाहिए। आदम ने सर्वत्र देव शास्त्र गुरु को समान महत्ता बताई है। फिर आप देव तथा शास्त्र को अर्थात जिन प्रतिमा एवं जिन वाणी को गौण करके, वही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, गौण करके सर्वगुरु यानी पुरुष को क्यों मुख्य करते हैं। तो वही का तो उत्तर चला न, वही प्रश्न का तो उत्तर चला। अच्छा, और प्रश्न उसमें क्या है, पूछने वाले खुद पूछ सकते हैं। हाँ, कौन सा है? जिन वाणी एवं जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन में डायरेक्ट निमित्त नहीं हो सकते, ऐसा किस शास्त्र में आया है? उस श्रीमद् रायचंद जी के वचनों में से ये बात निकलती है। और वैसे ही कोई शास्त्र का आधार तो मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जो समझ है वो इस विषय में ऐसी ही है कि वो सीधा निमित्त बिना संस्कार नहीं हो सकता है। निमित्त में तो सजीव मूर्ति ही चाहिए, वो बात श्रीमद् जी ने तो बराबर अपने अनुभव से कही है। तो यहां से ये बात मेरी समझ में बराबर बैठी है। हाँ, वो तो देशना लब्धि के अनंत बार आई, फिर भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं कि देशना लब्धि के बिना तो सम्यक दर्शन होता नहीं। तो ये तो लब्धियों के प्रकरण में आता ही करणानुयोग में। तो देशना लब्धि तो प्रत्यक्ष योग के बिना होती नहीं, शास्त्र से या जिन प्रतिमा से तो देशना लब्धि होती नहीं। तो ये बात तो इसके आगे की है। जब पहचान होती है और स्वरूप की पहचान होती है और ज्ञानी की पहचान होती है, वो तो देशना लब्धि के बाद आगे की बात है, सम्यक दर्शन समीप जाने के। तो करण लब्धियों के प्रकरण में करणानुयोग में से ये बात तो सीधी निकलती है कि देशना लब्धि जिन प्रतिमा से एवं शास्त्र से किसी को मिलती नहीं है, वो बात निकलती है उतनी तो। दर्शन होने के बाद छूट जाए। हाँ, तो मिथ्यात्व अवस्था में मृत्यु होगी। हाँ, तो शादी शांत हुआ ना, शादी शांत हुआ, शादी अनंत नहीं, शादी शांत हुआ तो ठीक। हाँ, ठीक है, हो सकता है। लाभ तो वो है कि सम्यक दर्शन के पहले स्वरूप की पहचान होती है, जिसको ज्ञानी अस्तित्व ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तित्व ग्रहण कहते हैं या अस्तित्व का प्रतिभास कहते हैं। उसी काल में संस्कार डल जाते हैं। वो संस्कार कभी निर्मूल नहीं होता। सम्यक दर्शन का नाश होता है लेकिन संस्कार का नाश नहीं होता है। तो वो जीव दूसरे भव में अल्प प्रयास से संस्कार वशात फिर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता है और अल्प पुरुषार्थ में भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो दोबारा सम्यक दर्शन होने का कारण तो अस्तित्व ग्रहण हुआ वही है, यही कारण से उनको दोबारा सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, हुए बिना रहेगा नहीं, यही कारण है। वो तो कहीं भी जन्म लेगा अपने पूर्व कर्म के अनुसार, जैसा भी पूर्व कर्म होगा वही गति वही जन्म हो जाएगा, उसका कोई नियम नहीं है। वो पूर्व संस्कारी थे, वो पूर्व संस्कारी थे, उनको समय सार से हुआ था, जिनवाणी से हुआ था। रायचंद जी को सम्यक दर्शन जिनवाणी से हुआ था, समय सार से हुआ था। गुरुदेव को भी जिनवाणी से हुआ था, समय सार से हुआ था। दोनों को समय सार से हुआ था, लेकिन वो दोनों संस्कारी थे, दोनों महात्मा संस्कारी थे। तो संस्कारी जीव को हो सकता है। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। प्रश्न करने वाले भाई साहब आप कृपया आगे आ जाइए। देशना लब्धि का सिद्धांत हमारे जिनवाणी में ही है, देशना लब्धि का सिद्धांत भी हमारे जिनवाणी में ही है। वो जिनवाणी ऐसी बोलती है, जिनवाणी का ही क्यों बोलना है, ये सिद्धांत तो जिनवाणी का है कि नहीं है। तो हम तो सब सिद्धांत का तो मेल करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, जिनवाणी को तो मानते हैं, तो जिनवाणी भी खुद यही कहती है, जैसे आगम प्रमाण और अनुभव प्रमाण। तो आगम में वो जिनवाणी है ना। वो जिनवाणी क्या बोलती है कि सभी प्रमाणों में बलवान प्रमाण अनुभव प्रमाण है। वो भी बात जिनवाणी की है, तो जिनवाणी की बात माननी चाहिए ना। जिनवाणी कहती है कि मेरे से भी अनुभव प्रमाण बलवान प्रमाण है, इस तरह से जिनवाणी की बात है ये। वर्तमान में गृहस्थ आश्रम में रह करके उदासीन जीवन कैसे जिया जावे, हमारी दिनचर्या कैसी हो जिससे आत्मानुभूति आत्मचिंतन मनन द्वारा इसी पर्याय में अवश्य ही प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में गृहस्थाश्रम में रह करके हम हमारे सभी प्रकार के उदय में आप कल्याण को मुख्य करके नीरस जीवन नीरस परिणमन कर सकते हैं अगर चाहे तो हमारी निष्ठा, हमारा लक्ष्य, हमारी भावनाएं प्रबल होगी और हमारा झुकाव एक तरफे अधिक हो जाएगा, तो तो सही भी हमारे ग्रस्त जीवन में हमारा झुकाव जो है एक और अधिक झुकने से दूसरी ओर का झुकाव कम हो जाता है, सहज होता है। तो उस तरह से उदासीन जीवन सभी प्रकार के उदय में हो सकता है, वो हमारे पुरुषार्थ अधीन है, हमारी भावना के अधीन है। और उदासीनता आती है तो आत्मचिंतन मनन बराबर चलता है, और आत्मचिंतन मनन बराबर चलता है तो उदासीनता सहज रूप से रहती है। ये कोई असंभव और अशक्य नहीं है। हमारे जो ज्ञानी हैं हुए सभी ग्रस्त में उदासीनता से रहे कि नहीं रहे, कि रहे हैं। आपने बताया कि सम्यक दृष्टि बैठता नहीं है, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा को चक्रवर्त्र प्राप्त होने पर छह खंड जीतने की तैयारी करता है। विस्तार से विस्तार पूर्वक समझाएं कि सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ किस प्रकार प्रबल बना रहे, जिसमें शिथिलता न आए, जिसको सत्संग मिलना दुर्लभ रहता है। पुरुषार्थ है वो तो स्वाधीन चीज है, और वो अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य से सम्यक दृष्टि को हर हालत में बना ही रहता है। किसी भी हालत में वो अपने पुरुषार्थ को छोड़ते नहीं, चुकते नहीं, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, पुरुषार्थ में हमेशा हमेशा रहते ही हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने स्थान में। दो तीन पर्चे रहे हैं वो पेंडिंग रखते हैं कल के स्वाध्याय। Thank you.